नमो भगवते वासुदेवाय हो नमो भगवते वासुदेवाय हो नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत् मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अवद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। नमः ब्राह्मणे देवाय गोब्राह्मणे हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 10 श्लोक नंबर 7 और 8। पहला श्लोक मैं पढ़ लेता हूँ, उसमें तात्पर्य नहीं है। दूसरा श्लोक फिर मेरा पीछा आप लोग उच्चारण करेंगे। श्री ऋषि उवाच धर्म व शत्रु कामेन जुयम मे प्रत्युदाहुता एष वह प्रियमात्मनः त्यजन्त सत्यजाम्यहम्। परम साधु दधीच ने कहा, मैंने तुम लोगों से धर्म की बात सुनने के लिए ही तुम्हारे मांगने पर अपना शरीर देने से इनकार कर दिया है। अब यद्यपि मुझे अपना शरीर अत्यंत प्रिय है, तो भी तुम लोगों के कल्याण के लिए मैं इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह आज नहीं तो कल अवश्य मुझे छोड़ देगा। श्लोक नंबर 8 पीछे दोहराइए। यह अध्रुवेण आत्मना नाथः नहीं ना धर्मम ना जसः पुमान इहेत भूतदयाया सा शुच्यः स्थावरयि अपि। जो अध्रुवेणात्मना नाथा न धर्मम न जसः पुमान इहेत भूतदयया सा शुच्यः स्थावरयि अपि। जो अध्रुवेणात्मना नाथा न धर्मम न जसः पुमान इहेत भूतदयया सा शुच्यः स्थावरैरपि। जो अध्रुवेणात्मना नाथा न धर्मम न जसः पुमान इहेत भूतदयया सा शुच्य स्थावरैरपि।
Yeah.
शब्दानुवाद। या जो कोई अध्रुपेणा अस्थायी आत्मना शरीर से नाथ हे देवो ना नहीं धर्मम धार्मिक नियम ना नहीं जसह कीर्ति पुमान मनुष्य यह तो के लिए प्रयत्न करता है भूत दयाया जीवों के लिए दया से स वह मनुष्य सोच सोचनीय स्थावर जड़ जीवों के द्वारा अपि भी। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरण भक्ति विदान स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की हे देवो, जो न तो दुखी प्राणियों पर दया दिखाता है और न धार्मिक नियमों या अक्षुण्ण कीर्ति के महान कार्यों के लिए अपने नश्वर शरीर की बलि कर सकता है, वह निश्चय ही जड़ प्राणियों तक के द्वारा धिक्कारा जाता है। तात्पर्य, इस प्रसंग में भगवान चैतन्य महाप्रभु तथा वृंदावन के छह गोस्वामी ने एक आदर्श स्थापित किया है। जहां तक चैतन्य महाप्रभु का संबंध में श्रीमद् भागवत 11:5-34 में कहा गया है, त्यक्त्वा सुदुष्य सुरेष्पिप्तज लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्ज वचसा जदगादर अन्यम माया मृगम दैत्य शिप्तम नो धावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हम भगवान के उन चरण कमल को नमस्कार करते हैं जिनका मनुष्य को सदैव स्मरण करना चाहिए। उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन यहाँ तक कि अपने नित्य संगिन को भी त्याग दिया, जिनकी पूजा स्वर्ग के वासी तक करते हैं। वे भौतिक माया के द्वारा मोहग्रस्त पतित आत्माओं के उद्धार के लिए वन में चले गए। संन्यास ग्रहण करने का अभिप्राय है नागरिक रूप से आत्महत्या, किंतु संन्यास प्रत्येक ब्राह्मण अर्थात प्रत्येक प्रथम कोटि के मनुष्य के लिए तो अनिवार्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु की पत्नी अत्यंत तरुणी एवं सुंदरी थी और उनकी माता अत्यंत स्नेहमयी थी। उनके परिवार में सदस्यों का व्यवहार इतना मधुर था कि देवता भी ऐसे घरेलू सुख की कल्पना नहीं कर सकते थे। फिर भी संसार के सभी पतित आत्माओं के उद्धार के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास धारण कर लिया। उन्होंने कठोर संन्यास का जीवन बिताया और सभी शारीरिक सुख का त्याग किया। इसी प्रकार उनके छह गोस्वामी समाज में अच्छे पद पर मंत्री थे, किंतु वे सब कुछ त्याग कर चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सम्मिलित हो गए। श्रीनिवास आचार्य कहते हैं, त्यक्त्वा तुनम शेष मंडल पति श्रेणी सदा तुच्छवत भूत्वा दिना गणेशकै करुण या कोपिन कंथा श्रितो। ये गोस्वामी अपने अपने मंत्री जमींदार तथा विद्वान पदों को त्याग कर श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में संसार की पतित आत्माओं पर अनुग्रह करने के लिए सम्मिलित हो गए। दीन गणेश को करुण या उन्होंने भिक्षुकों का जीवन स्वीकार किया। वे केवल लंगूठी तथा फट्टी गुदड़ी कंथा धारण करते हुए वृंदावन में रहने लगे और चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करते थे, जिससे वृंदावन की विगत कीर्ति पुनः खोद सके। इस प्रकार जिन लोगों को सुख सुविधा प्राप्त है उन्हें चाहिए कि वह पतित आत्माओं के उदार हेतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित हो। भूत दयाया माया मृग दैत्ये शिप्तम तथा दीन गणेश कौ करुणया, इन सभी शब्दों से यही अर्थ निकलता है। ये शब्द उन लोगों के लिए जो मानव समाज को उचित ज्ञान तक उठाना चाहते हैं अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को चाहिए कि इस चैतन्य महापुरुष गोस्वामी तथा उनसे भी पूर्व महर्षि दधीचि के आदेशों का अनुकरण करते हुए कृष्ण भवन अमृत आंदोलन में सम्मिलित हो क्षणिक शारीरिक सुख के लिए अपने जीवन को व्यर्थ न जाने देकर मनुष्य को चाहिए कि उसे अच्छे कार्यों में लगाए। अंततः इसी शरीर को कष्ट होना है, अतः मनुष्य को चाहिए कि इसका उत्सर्ग सारे संसार में धर्म फैलाने के लिए शुभ कार्य में करें। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्रीगुरुश्रुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवास श्रीरूपं सागरदत्तं सागण रघुनाथानीतं तं सजीवं साद्वैतं सवदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदनसागना ललिता श्रीविशाखानितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। प्रातःकाल भागवत कक्षा में आप सभी को कृष्णवाला रंग मंदिर का तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। आप लोग को ये जो वृतासुर का चरित्र, उनका जन्म सब कुछ आप लोग सुन चुके हैं। अभी जो शीर्षक चल रहा है देवताओं तथा वृतासुर के मध्य युद्ध। जब कभी परेशानी आता है युद्ध होता है, कभी कभी आश्रम में युद्ध हो जाता है, कभी देश देश में युद्ध चलता है, कभी सुर असुर भी युद्ध चलता है ना, कभी सास ससुर युद्ध भी चलता है। सब हमेशा हर जगह पे युद्ध चल रहा है, लेकिन ये जो युद्ध है ये बहुत खतरनाक युद्ध है। ये युद्ध के लिए फिर दूसरा से सहाय्य मांग रहा है, देवता लोग जाकर दूसरा से सहाय्य ले रहा है असुर को मारने के लिए, वृतासुर को। लेकिन वृतासुर तो बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भागवत कक्षा है ये भागवत इतना दुर्लभ है, उसको प्राप्त करने के लिए और भागवत कक्षा में आने के लिए कहते हैं अज्ञान तो स्वीकृति होता है, तो व्यक्ति भागवत संघ को प्राप्त करता है, भागवत का संघ को प्राप्त करता है। जैसे प्रकार कहते हैं ये मनुष्य जीवन तो दुर्लभ है, फिर कहते हैं मनुष्य जीवन में भगवान को प्राप्त करने के लिए वो भी दुर्लभ है। इसलिए मेरा पीछे दोहरा है, दुर्लभ द्वारिका बासो दुर्लभ कृष्ण दर्शन दुर्लभ गोमती स्नानम दुर्लभ रुक्मिणी पति। ये सब कुछ दुर्लभ है, दुर्लभ द्वारिका वास, द्वारिका में वास करना दुर्लभ है, और दुर्लभ है कृष्ण को भी दर्शन करना, द्वारिका में जाकर कृष्ण को दर्शन करना वो भी दुर्लभ है। और क्या है, दुर्लभ गोमती स्नानम, गोमती में स्नान करना वो भी दुर्लभ है, और दुर्लभ रुक्मिणीपति, रुक्मिणीपति कौन है, कृष्ण, कृष्ण को पाना भी वो भी दुर्लभ है। और जब भागवत हमें श्रवण करते हैं, जब भागवत श्रवण करते हैं, भागवत सेवया कहा गया, नित्यम भागवत सेवया, सेवा करना है। इसलिए और एक श्लोक आता है भागवत महात्म में, क्यों प्रत्येक दिन भागवत श्रवण करने मात्र से भगवान स्वयं हृदय में बंध जाते हैं, हृदय में आसन लगा के बैठ जाते हैं। हम जैसे आसन लगा के बैठ जाते हैं, परीक्षित महाराज आसन लगा के बैठ गए 7 दिन तक, हम तो 1 घंटा बैठने में बड़ा मुश्किल है, फिर सोचते हैं कितना बजे प्रसाद होगा, पहले सोचते हैं, घड़ी भी देखते रहते हैं, आगे से पीछे से घड़ी देखते हैं, इसलिए हमें 2-2 घड़ी लगाया देखा इसलिए बड़ा महल पे 2 घड़ी लगा हुआ। मैं एक जगह पे अभी लेक्चर देने के लिए गया था, वहां पे कोई घड़ी नहीं था, लेक्चर चल रहा है चल रहा है चल रहा है, 12 बज गया। अभी जब गया था मैंने, अभी देखा तो 12 बज गया, सभी लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, उनको इतना आनंद आ रहा है, बोल रहे हैं प्रभु जी और बोलिए, मतलब मेरा को थोड़ा पास लग गया। 3 घंटा बैठ गए, इसलिए कथा में रुचि होना चाहिए, मेरा पीछे दोहराइए, सदा सेव्या सदा सेव्या, सदा सेव्या सदा सेव्या, श्रीमद्भागवती कथा, श्रीमद्भागवती कथा, जस्य श्रवण मात्रेण, जस्य श्रवण मात्रेण हरिम चितम समाश्रयेत, हरिम चितम समाश्रयेत। इसका अर्थ क्या है? सदा सेव्य, सदा सेव्य, प्रत्येक दिन सेवा करना है। ऐसा नहीं आज सेवा किया कल नहीं, सेवा करना मतलब किसका है? श्रीमद् भागवत कथा, भागवत कथा को प्रत्येक दिन श्रवण करना चाहिए। इसलिए हम लोग प्रत्येक दिन नहीं मंगलाचरण में पढ़ते हैं, नष्ट प्रायशु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवाया। कोई जगह पे, किसी भी जगह पे मेंशन नहीं है सात दिन तक कथा, सप्त दिवसीय कथा नहीं लिखा हुआ। नित्यम, प्रभुपाद ने ये श्लोक को बहुत कोटेशन किया, नित्यम भागवत सेवा, भागवत श्रवण करने मात्र से क्या होगा? प्रत्येक दिन श्रवण करना है, तब क्या होगा? जस्य श्रवण मात्रण, जब हमें भागवत को श्रवण करते, जस्य श्रवण मात्रण हरिम चितम, हरि चित में समाश्रित, समान रूप में भगवान आश्रय ले लेते हैं। प्रत्येक जीव का हृदय में भगवान परमात्मा में है, लेकिन भक्त का हृदय में भगवान विश्राम करते हैं। भगवान को बहुत अच्छा लगता है भक्त का हृदय में बैठने के लिए, लेकिन बाहर पे जितने सब, जितने जगत में प्राणी है, सभी प्राणी की सभी बद्ध जीव क्या करते हैं? भगवान को परेशानी करते हैं। भगवान क्या परेशान करते हैं? भगवान डिस्टर्ब करते हैं, भगवान से सुबह से शाम तक मांगते रहते हैं, भगवान इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन भक्त कुछ नहीं मांगता है, भक्त सिर्फ भक्ति ही मांगता है। भक्ति मतलब सेवा मांगता है, प्रभु मेरा को आप दास बनाइए, कैसा मैं सेवा कर सकूं आपका। इसलिए ये जब मांगता है तो भगवान क्या करते हैं? हरिम चितम समाश रहते, भगवान उसका, उसी व्यक्ति का चित में आश्रय ले लेते हैं। इसलिए कहते हैं प्रत्येक दिन को हमें भागवत श्रवण करना चाहिए, प्रत्येक दिन। और भागवत क्या है पहले जानना चाहिए, भागवत है क्या? भागवत ये जो है सूर्य सदृश है, अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए। भगवान कृष्ण यहां से चले गए, जब कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञानम आदि विषय कलो नष्ट दृशामेश पुराण अर्क अधुनदित, पुराण अर्क, ये पुराण शब्द श्रीमद भागवत महापुराण कहा गया। अर्क पुराण, अर्क मतलब सूर्य, सूर्य जहां पे प्रकाश देता है अंधेरा जैसा भाग जाता है, उसी पर अज्ञान अंधकार रूपी व्यक्ति का अंदर सूर्य रूपी भागवत को विराजमान कराना है। सूर्य रूपी भागवत है ये, क्या करे? अज्ञान अंधकार को दूर करेगा। भगवान या धरती छोड़ने के बाद धरती पे सिर्फ एक चीज छोड़ कर गए, पुराण अर्क को, श्रीमद् भागवत को। इसीलिए कहते हमें भागवत को प्रत्येक दिन श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने मात्र से व्यक्ति के हृदय में भगवान स्वयं समाश्रय लेते हैं। हरे कृष्णा। ऐसा लग रहा है सभी लोग सो गए हैं, क्यों? ठंडी पड़ता है ना वृंदावन का, ठंडी एक बार जो शयन किया बस क्या होता है, उसका शरीर पूरा स्टील बॉडी हो जाता है, स्टील बॉडी। और बाहर कितना भी ठंडी हो, लेकिन वृंदावन ठंडी एक बार सहन कर लीजिएगा। तो पहले ये जो श्लोक चल रहा था, छह श्लोक तक वर्णन हो चुका है ये अध्याय का। छह श्लोक का अंदर ये देवता लोग को प्रार्थना कर चुके हैं। देवता लोग को प्रार्थना करने के बाद आया श्री ऋषि उवाच। श्री ऋषि किसको कहा गया? दधीचि मुनि को श्री ऋषि उवाच कहकर संबोधन कर रहे देवता लोग। क्या कहते हैं? कहते हैं परम साधु दधीचि ने कहा, मैंने तुम लोग से धर्म की बात सुन लिया, तुम जितने सब कुछ बात किया मैं धर्म की बात सुन लिया, ये सुनने के लिए मैं चाहता था आप लोग क्या बताना चाहते हैं देवता लोग का मुख से। लेकिन एक बार तो दधीचि मुनि ने इनकार कर दिया, एक बार तो मना कर दिया, हंसी मजाक में मना कर दिया। लेकिन इच्छा तो था देने के लिए, लेकिन हंसी मजाक होता है ना कभी कभी, हंसी मजाक में मना कर दिया था। लेकिन बाद में खुद को सोचा, ये शरीर मिला किसके लिए? ये दधीचि मुनि से सारा जगतवासी लोग के लिए शिक्षा है, ये शरीर मिला किसके लिए? सारा जगत कल्याण के लिए शरीर मिला है। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु इधर शिल प्रभुपाद व्याख्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु आए किसके लिए और षड़ गोस्वामी को वृंदावन भेजा किसके लिए? इनसे शिक्षा है, लेकिन बाई चांस हम इसी स्थान पर होते थे, हमारे पास धारा सारा धन संपत्ति होता था, तब हमें घर द्वार त्याग करते थे ना, वृंदावन आते थे ना, वृंदावन हमको पता होता था। ये छह गोस्वामी नहीं होते थे तब हमको कुछ पता होता था? ये छह गोस्वामी का चरण पे हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें गोस्वामी स्तर पर आना पड़ेगा अभी। लेकिन हमें गोस्वामी बनना नहीं चाहते, हमें गोदास बन के रहे, वृंदावन में है लेकिन गोदास बन है, लेकिन गोस्वामी बनना। टाइटली बनने से नहीं होता है, किसका किसका होता है टाइटली गोस्वामी है, नहीं, ये गोस्वामी नहीं होना चाहिए हमको, गोदास भी नहीं, हमको गोस्वामी बनना है। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये छह गोस्वामी। एछय करय गोसाई करे चरण बंदन जा हैते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। ये छह गोसाई का चरण में वंदन करता हूँ, मेरा जितने सब अभिष्ट है मनोवांछा है पूर्ण हो जाए, ये सब नष्ट होके। ये छह गोस्वामी ये लेवल पे थे, तब तो ये गोसाई बनने के लिए चैतन्य महाप्रभु ये वृंदावन भेजा, क्योंकि वृंदावन सारा लिप्त हो गया था, इसी लुप्त तीर्थ को उधार करने के लिए। अभी आप कहाँ भी जाओगे ना, अभी जितने सब हम लोग को तीर्थ जाते हैं, अभी तीर्थ जाते हैं वो तीर्थ सब लुप्त हो चुका है, हम पे वहाँ पे जाते हैं मालूम पड़ता है यहाँ पे कुछ हुआ था, तब हमें वहाँ जाकर मथा टेकते हैं, लेकिन फिर मन में भ्रांति आता है। अभी जस्ट मैंने गया था नर्मदा का किनारे पे जबलपुर में, हिज होलनेस भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज का व्यास पूजा था, तो महाराज का व्यास पूजा में तब वहां पे देखा था नदी का किनार पे सारा गंदगी फैला हुआ है, और पानी इतने सुंदर सुशीतल है, आप प्रत्येक दिन नहाओगे तो मन फिर भी प्रसन्न नहीं होगा, मतलब इतना आनंद प्रसन्न होगा, इतना आनंद मिलेगा, पानी इतना सुशीतल है। लेकिन नदी से स्नान कर थोड़ा ऊपर आएंगे ना, बस मन फिर क्या हो जाता है, वो कीचड़ देखना लगता है, यह हमारा दुष्ट शक्ति है। क्योंकि सारा तीर्थ को हर जगह पे तीर्थ में क्या करते हैं, कचड़ा भर चुके हैं, लेकिन हाँ मैं उसी लेवल पे नहीं है, ये दृष्टि शक्ति नहीं है कि वो तीर्थ है दर्शन करने का। लेकिन हमारा भक्त समाज में ये मालूम पड़ता है, हाँ हम लोग को इसी भावना लेकर जाते हैं तो तीर्थ में आए तो स्नान करें और वहां पर कोई अपराध नहीं हो जाए, इसी भावना लेकर जाते हैं। लेकिन कहने का अर्थ है जितने तीर्थ है, और सबसे बड़ा तीर्थ क्या है, गुरुपादाश्रय, सबसे बड़ा तीर्थ है गुरुपादाश्रय। गुरु जहां चलता है, इसलिए कहते हैं गुरु चलता फरता तीर्थ है, जैसा गो माता चलता फरता मंदिर है, उसी पर गुरु चलता फरता तीर्थ है। जहां पे गुरु आश्रय लेके हाँ गुरु निष्ठा भक्ति किया, आपके लिए सारा तीर्थ वही है, आपको जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सारा तीर्थ वही है। लेकिन मेन होता है गुरु निष्ठा भक्ति करना। तब हम कहते हैं यहां पे उनका धर्म का बात सुनने के लिए थोड़ा दधीचि मुनि से पहले इनकार किया, फिर शरीर को देने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो समझ गए दधीचि मुनि ने ये शरीर किसके लिए मिला है, परो उपकार के लिए, उपकार करने के लिए। तब दधीचि मुनि में फिर क्या किया, ये शरीर को फिर छोड़ा, ये 7 नंबर श्लोक में। और वो 8 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं, जो न तो दुखी प्राणियों पर दया दिखाता है और न धार्मिक नियम या अक्षुण्ण कीर्ति के महान कार्यों के लिए अपने नश्वर शरीरों को बलि कर सकता है। एक जगह पे लिखा है बाई चांस भगवान स्वयं आएंगे आपका ये शरीर को मांगने के लिए, आप देने के लिए तैयार होंगे? आप जितने से बैठे हाथ उठाइए, तैयार होंगे? नहीं, कि ये शरीर सभी को आसक्त है ना, ये शरीर के कितने हम लोग आसक्त है, शरीर छोड़ने के लिए कोई चाहता है? कोई नहीं। बोल देंगे हाँ जी, बोल देंगे पीछे से कोई आवाज उठा रहे हाँ जी, लेकिन सभी का आसक्त है, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता है। जिसी प्रकार हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बता रहे थे, जीने के लिए अच्छा से जीने के लिए चाहते हैं, अच्छा से कोई मरना नहीं चाहता है। अच्छा मृत्यु किसको कहता है? तो भाई शरीर को सेवा में लगा दे के शरीर छोड़ दे, ये सबसे बड़ा अच्छा मृत्यु है। और दूसरा अच्छा मृत्यु क्या है? भगवान का महाप्रसाद भोजन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, भागवत श्रवण करते हुए शरीर छोड़ जाता है, तब इसको अच्छा मृत्यु कहा जाता है। संसार में हर व्यक्ति चाहता है अच्छा से जीने के लिए, कोई चाहता है कि अच्छा से मरने के लिए? कोई संसार में नहीं चाहता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में आता है अंतकाल च स्मरण मुक्ता कलेवरम जब प्रयाति सत मधुभाव जाति ने स्तर संशय। शेष मुहूर्त में कैसा भगवान का नाम करते हुए शरीर से प्राण छूट जाए, इसको कहते हैं अच्छा मृत्यु। और शरीर को हमेशा के लिए सेवा में लगा दें, ये शरीर जब तक प्रभु का सेवा में नहीं लगेगा तब तक ये शरीर हमेशा के लिए अपवित्र रहेगा। पहले ध्यान दीजिए, ये शरीर कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। शरीर जन्म से लेकर अपवित्र है, कैसे आपको समझाऊं? ये शरीर जन्म से लेकर लास्ट तक अपवित्र है। शरीर में कोई भी अच्छा चीज नहीं है जो कि भगवान का सेवा में लग सकते, लेकिन शरीर का ऊपर ढका हुआ है जो अच्छा चमड़ी लगा हुआ है, अच्छा कवर लगा हुआ, इसी अच्छा कवर को देखते हुए हमें भगवान का सेवा में लगाया जा रहा है। लेकिन शरीर का अंदर से शरीर का ऊपर से हमें थोड़ा छेद कर देंगे ना, खून निकलेगा, पस निकलेगा, हड्डियां दिखाई देगा, है कि नहीं? कोई भी स्पर्श नहीं करेगा, लेकिन ऊपर ढका हुआ है इसलिए हमें शरीर को स्पर्श कर रहा है और शरीर को और अच्छा मान रहा है। और ये शरीर तब पवित्र होगा जब भगवान का सेवा में लगेगा। कहते हैं तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दे दान, मन पवित्र हरि भजन से त्रिविध हो कल्याण। तन को प्रभु का सेवा में लगाए तब जाके पवित्र होगा। संसार का सेवा में लगाने से शरीर कभी भी क्या होगा? पवित्र नहीं हो सकता है। लेकिन ये शरीर लगा हुआ संसार का सेवा में, कभी श्याम सुंदर का सेवा में छोड़ के हमें संसार का सेवा में लगाया हुआ, सही? तब श्याम सुंदर का सेवा में लगाएंगे तब शरीर पवित्र हो जाएगा। तन पवित्र सेवा किए, सेवा करना निश्चित, ये शरीर का धर्म है सेवा करना। ये शरीर का धर्म और कुछ नहीं, ये शरीर का धर्म है सेवा करना। और किसका सेवा करने से पवित्र होगा? भगवान का सेवा करने से। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, और धन भी पवित्र होगा जो अब धन भगवान और भक्त का सेवा में लगा होते हैं, तब जाके धन पवित्र होता है, नहीं तो धन अपवित्र है। क्योंकि हमें धन को कमाते हैं अपवित्र से, और धन को कमाने के लिए इतने कष्ट सहन करना पड़ता है, इतने कष्ट सहन करना पड़ता है। अर्थस्य उपार्जने दुखम, दुखम अर्जिते रक्षणे, और नाश दुखम वय दुखम अर्थ कतः सुखम, अर्थ कैसा सुख देगा? धन से ही सब कुछ, धन से दुख ही मिलता है। और संसार में लोग बोल रहे धन ही सुख देता है, कोई है धन मिलने से सुखी हो जाता है? संभाल लें, धन से दुख ही दुख मिलेगा। पहला तो अर्थस्य उपार्जन दुखम, धन को कमाने के लिए कितने कष्ट है, गधा तरफ से मेहनत करना पड़ता है 12-12 घंटा, 28 घंटा नहीं है लेकिन 12-12 घंटा, 15-15 घंटा मेहनत करना पड़ता है धन को कमाने के लिए, और पसीना निकल जाता है, मुख से छाग निकलता है, आंख से पानी निकल जाता है धन को कमाने के लिए। अर्थस्य उपार्जन दुखम, कितने कष्ट है। और दुखम अर्जित रक्षण, और धन को कमा के इकट्ठा करने के लिए कितना कष्ट है, कितना दुख है, लगता है नहीं लगता है? इसको इकट्ठा के रखने के लिए, नहीं तो फिर जीएसटी लग जाएगा नहीं तो टैक्स लग जाएगा, सही? कितने कष्ट है इसको रखने के लिए, फिर भारत में कोई बैंक में पकड़ा जाएगा तो फिर हमें विदेश का बैंक में रख रहा है, तो कितने कष्ट है। फिर और क्या क्या, नाश दुखम भय दुखम, नाश दुख, और यदि पैसा थोड़ा नष्ट हो जाता है, बाई चांस जैसा उड़ीसा में आया अभी फनी आया, कितना पैसा चला गया, फनी से बुलबुल आया अभी, वहां के कितने साइक्लोन सब हुआ, इससे पैसा नष्ट हो गया, तब नाश दुखम भय दुखम। और बाई चांस पैसा जब खर्च करते हैं ना, सोचना पड़ता है, विदेश का हमारा भारतीय लोग विदेश में जाकर कमाते हैं, यहाँ पे इंडिया में आकर खर्च करने में उनको दुख नहीं लगता है, लेकिन विदेश में कमा के विदेश में खर्च करना उनको बहुत कष्ट होता है, देखना पड़ता है सुबह से शाम तक। हमारा जैसा भारत में कमा के भारत में खर्च करना, लेकिन भारत का पैसा कमा के विदेश में खर्च करना,
ये उल्टा है। तब कहने का अर्थ है भय दुखम, जब खर्चा हो जाता है उसके लिए दुख है, और अर्थ कुतः सुखम, अर्थ मतलब धन कहां से सुख देने वाले है। जिस प्रकार हमें शरीर के लिए सारा कुछ, ये शरीर को सुरक्षा देने के लिए कितनी कष्ट उठाना पड़ता है, सिर्फ शरीर को, ये शरीर रहने वाले नहीं है, लेकिन इस शरीर भगवान का सेवा में लग जाए। एक बार भगवान ने ये जन्म दिया मनुष्य जीवन, और शरीर भगवान का सेवा में समर्पित करते हैं। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, ये जन्म मिला है सत्संग के लिए, दुर्लभ है मनुष्य जीवन सत्संग के लिए मिला है। तब यही विचार लेके तब क्या कहते हैं दधीचि मुनि, शरीर देने के लिए तैयार हो गए। किसको? देवता लोग को। अरे दधीचि मुनि का हाड़ी से इतना बड़ा वज्र बनता है, और उनका हाड़िया से अस्त्र बन गया, और वो अस्त्र क्या होता है, बुत्राशु को मार सकता है। और वो कहते हैं दधीचि मुनि का ये जो हाड़ी में इतने पावर कहां से आया, इतने शक्ति कहां से आया। एक बार क्या हुआ था, ये जो दधीचि मुनि का शरीर में इतना शक्ति, जो हाड़िया में इतने शक्ति कहां से आया, दधीचि की अस्थियों की कठोरता के संबंध में ब्रह्म पुराण में वर्णन है। एक बार देवासुर का संग्राम चल रहा था, यहां पे तो युद्ध में बुत्राशु जीत गया और देवता लोग हार गए, है कि नहीं। लेकिन दूसरा पहली बार जब हुआ तो ये ब्रह्म पुराण के वर्णन है, पहली बार जब देवासुर संग्राम हुआ था, देवता लोग असुरों को पराजित कर दिया। क्यों? हर जगह में आप सुनेंगे असुर लोग पराजित होते हैं, लेकिन यहां पे बुत्राशु जीत गया और देवता लोग हार गया, और देवता लोग को जाके दधीचि मुनि से प्रार्थना किए, उनका शरीर को मांगे। तब यहां पे क्या हुआ, असुर लोग पराजित करके अपने समस्त दिव्य अस्त्र क्या किए, देवता लोग लेके महर्षि दधीचि का आश्रम में धरोहर रूप से रख दिए। जब दैत्य को यह बात पता लगा, मालूम हो गया इन अस्त्र शस्त्रों को हड़पने के लिए, चोरी करने के लिए विविध प्रकार के प्रयत्न किया, तथा महर्षि के सावधानी देखकर उनसे चिढ़ने लगे। सारा असुर लोग महर्षि का ऊपर, दधीचि महर्षि का ऊपर गुस्सा हो गया। दैत्य ने दधीचि से भी वैर बांध लिया, और उनका साथ भी लड़ाई करने के लिए असुर लोग जाने लगे। तब फिर क्या हुआ, जब दधीचि को यह निश्चय पता लग गया, दैत्य इन आयुधों के लेकर, आयुधों के लेने पर लगे हैं, तो उन्होंने इनकी रक्षा के लिए एक ही काम किया, दधीचि मुनि ने एक ही काम किया, क्या काम किया, उन्होंने पवित्र जल को आह्वान किया। दधीचि ने सारा पवित्र जल से मंत्र पढ़ते हुए यह अस्त्र शस्त्र को नहलाया, यह अस्त्र शस्त्र को क्या किया, दधीचि मुनि ने स्नान कराया, हम जैसा स्नान करते हैं ना, सारा तीर्थ को पवित्र जल को बुला के और सारा अस्त्र शस्त्र को नहलाया, और फिर वह सर्वास्त्रमय अस्त्र से तेज निकल जाने से वे सभी अस्त्र शस्त्र का क्या हुआ, शक्तिहीन हो गए, सारा अस्त्र शस्त्र शक्तिहीन हो गए, और वो नष्ट हो गया, जितने अस्त्र शस्त्र शक्तिहीन होकर नष्ट हो गया। लेकिन जो अस्त्र शस्त्र को तीर्थ जल से दधीचि मुनि ने स्नान कराया था, और वो जल को क्या किए, दधीचि मुनि ने खुद पान कर लिया, और सारा जल को पान करने के नाते दधीचि मुनि का शरीर में जितने सब अस्त्र शस्त्र का जो तेज था, वो तेज किस में आ गया, दधीचि मुनि का हड्डियों में आ गया। तो दधीचि मुनि का हड्डियों में आने का बाद है समा गया, और यही अस्त्र, यही दधीचि मुनि का इसी अस्थि से तब इंद्र ने मांग कर लिया, भिक्षा मांगा, दे दो। फिर तब दधीचि मुनि ने अपना शरीर को छोड़ने का बाद, और ये शरीर से छोड़ने पर सिर्फ हड्डियों को लिया, लेकिन मांस को क्या हुआ, ये मांस, और एक ही जगह पे लिखा हुआ
दधीच मुनि ने इंद्र को बताए थे शरीर को छोड़ने का पहले, मेरा इच्छा है एक बार सभी तीर्थों में स्नान करने के लिए। शरीर छोड़ने का पहले दधीच मुनि का यह मन में विचार आया था, तो वह इंद्र ने सारा तीर्थ को आह्वान किया, सारा तीर्थ को आह्वान किया। ये है नमिष्यारण्य में, और नमिष्यारण्य में उन्होंने दधीचि मुनि को पद्मासन में बैठने के लिए कहा। जब पद्मासन में बैठा तब इंद्र ने सभी तीर्थों को, भारत में 66 अरब तीर्थ है, 66 अरब तीर्थ है, सारा तीर्थों को आह्वान किया गया। इंद्र ने सभी तीर्थ आए और तीर्थ आके दधीचि मुनि को स्नान कराए। जब दधीचि मुनि को स्नान कराए, दधीचि मुनि स्नान करने का बाद तब दधीचि मुनि मन इंद्रिय को क्या किया, परमात्मा में लीन कर दिया, परमात्मा में लीन करा। लीन करने के बाद शरीर को छोड़, शरीर से प्राण निकल गया। निकलने के बाद ये शरीर से, शरीर को फिर इंद्र ने नमिष्यारण्य में जो जंगली गाय होते हैं वो गाय को बुलाया, और वो गाय किए किए दधीचि मुनि का शरीर को चाट चाट के, मतलब शरीर से हड्डियों को निकाल दिए, मांस को खा के और वो हड्डियों को निकाल दिए, और वो ही हड्डी को लेके इंद्र ने जाके इसको वज्र बनाया। ये दूसरा पुराण में वर्णन है। तब कहने का अर्थ है, कहने का अर्थ है ये हड्डियों में कितने शक्ति था। जो भगवान का भक्त होते हैं उनका संपूर्ण शरीर भगवान का सेवा में जब लगता है ना, ये शरीर क्या होता है, सुगंधित निकलना चालू होता है। हम लोग को शरीर से सुगंधित निकालने के लिए हमें इतर लगाना पड़ता है, लेकिन जब पुतना आई थी, पुतना आके भगवान, पुतना के पास जब भगवान आए थे, भगवान स्पर्श करने मात्र से ये शरीर से, पुतना का शरीर से क्या निकला, दुर्गंध सुगंध निकला। चंदन का लकड़ी से जितना खुशबू निकलता है ना, ऐसा ही खुशबू निकल रहा है। तो जो भक्त लोग जब भगवान का सेवा करते हैं तब शरीर ऑटोमेटिकली पवित्र और शुद्ध हो जाता है, और उस शरीर से ही सुगंध निकलेगा। लेकिन ये मान भाव लेकर सेवा कीजिएगा। तब कहते हैं चैतन्य महाप्रभु यही शिक्षा देने के लिए, जो भी हमें व्यक्ति शरीर छोड़ना नहीं चाहता है, शरीर का प्रति आसक्त है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सारा जगत को छोड़े, अपना परिवार को त्याग दिया, हाँ धर्म पत्नी को छोड़े और स्नेहमय माता जी को त्याग किए, किसके लिए त्याग किए, यही सारा जीव को उद्धार करने के लिए, जीव कल्याण के लिए जगत को, मतलब परिवार को त्याग किया और संन्यास लेके जंगल चल पड़े। और चैतन्य महाप्रभु जहां पे जाते थे, चैतन्य महाप्रभु को देखते हुए हाँ झारखंड जंगल में सारा पशु लोग भी क्या करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम करने लगे। चैतन्य महाप्रभु देखते हुए दर्शन करने मात्र से हरि नाम करने लगे। और ये जो गुस्सामी लोग चैतन्य महाप्रभु का धारा अनुसार, चैतन्य महाप्रभु का वचन को सुनते हुए, चैतन्य महाप्रभु का वाणी को सुनते हुए गोस्वामी लोग वृंदावन आए। और गोस्वामी लोग ये छोटा मोटा घर का लोग नहीं थे, धन का कमी नहीं था, इतने बड़े बड़े मिनिस्टर लोग का पदवी को ग्रहण किए थे, लेकिन आकर क्या पहने। अभी बाईचांस कोई बड़ा घर का लड़का लंगोट पहन के और कमंडल क्या बोलते हैं, लोटा लेकर घूमे, इसको सभी लोग क्या बोलेंगे, पागल है, क्या बोलेंगे, पागल है कि नहीं। इतना बड़ा घर का लड़का है, लंगोट पहन के और क्या घर पे। अभी तो हम लोग ये कह देते हैं, लेकिन आप देखिए अभी तो लोग ऐसा डिजाइन जो ड्रेस पहन रहे हैं, कितने फटा हुआ, कितने जगह पे होल है, जैसा कपड़ा नहीं मिल रहा है आज का दुनिया में। सर भी बड़े घर का लड़के, बड़े घर का लड़का लड़की जो ड्रेस पहनते हैं उनको देखिए, कितना जगह यहां फटा है, यहां फटा, लास्ट में यहां भी फट गया। हाँ
कोई मेरा को बता रहा था, बोला ये ज्यादा कॉस्टली है ज्यादा कॉस्टली भी है तो लेकिन साधु संत लोगों को क्या लेकर घूमते थे, ये शिक्षा है कुछ ही का प्रति, ना घर का प्रति आसक्ति है, ना शरीर के प्रति आसक्त है, ना भूमि का प्रति आसक्त है, ना धन की प्रति आसक्त है, कुछ भी नहीं। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक में कहे ना, ना धनम ना जन्म। ये श्लोक को हमारा भक्त लोग को कभी कभी बोलते चैतन्य महाप्रभु इसको उल्टा कर दिया, गलती से उल्टा कर दिया, ना धनम नहीं बोलना चाहिए, सधनम बोलना चाहिए था। हो सकता है चैतन्य महाप्रभु उसी टाइम पे भूल गए होंगे, भक्त लोग ऐसा कुछ बोलते हैं, बोले है धन नहीं होगा तो कैसा काम चलेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलना चाहिए सधनम सजनम, सजनम मतलब ऐसा मतलब भक्तों को नहीं मिलेंगे कैसा सत्संग। और चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं न जन्म, वही बोलना ठीक नहीं था। देखिए चैतन्य महाप्रभु का ऊपर दोषार आप लगाने लग रहे हैं तो क्या कह जाएगा। तो और क्या कहते हैं, यहां पे एक ही भजन आता है, कहते हैं कुलिया ते पाषंडीरा अत्याचार कैल जरा तास बार दोष क्षमा करी जगते कैल घोषणा तर रिब सही सुना हन कीर्तनीय सदा हरि। कुलिया ते पाषंडीरा अत्याचार कैल जरा, कुलिया में कुलिया ग्राम जानते ना नवद्वीप साइड, अत्याचार जितने अत्याचार तासोबरा दोषो क्षमा करे, चैतन्य महाप्रभु के दोष को क्षमा कर दिए करके क्या किया, जगते कैलो घोषणा तरोरी बो सही सुना। सहन करना पड़ता है, कष्ट आएगा भक्त के लिए, बहुत कष्ट आएगा। आप लोग को जानते हैं कि नहीं जानते, मैं अपना रियलाइजेशन एक बता दे रहा हूं दो मिनट के लिए। यही गीता माराथन चल रहा था हैदराबाद में, मैं प्रीचिंग करने के लिए गया था उड़ीसा का भुवनेश्वर मंदिर का बस लेकर गया था, तीन बार पिटाई खाया। गीता माराथन का टाइम था, एक ही बैंक के अंदर घुस गया, तो बैंक के अंदर घुसने का बाद है तो बैंक पहले तो हम लोग को, मैं जब भी जाता हूँ पहले बड़ा लोग को मिलता हूँ। बैंक के अंदर घुसा तो पहले बैंक मैनेजर के पास गया, बैंक मैनेजर नाराज होकर बोला बाहर निकलो बाहर निकलो, मैं वहाँ से बाहर निकल आया। फिर दूसरा के पास गया, दूसरा के पास जाने के बाद वो बोला बाहर निकलो बाहर निकलो, तो वो उन्होंने सिक्योरिटी को बता दिया, सिक्योरिटी के हाथ में कुछ पकड़ा था उसमें लाठी लगा दिया, तभी सहन किया। तभी सहन करके और उसी ऑफिस में कम से कम 10 की 20 भगवद गीता बेच कर आया। कैसा बेचा, उनका लंच टाइम हुआ था, पिटाई तो खा के क्योंकि मन को तो कष्ट हो रहा है, तो पिटाई खा के बाहर निकाला। बाहर निकलने के बाद तो थोड़ा लंच टाइम हो गया, और लंच टाइम में तो कोई ऑफिस में नहीं बैठता है, क्या करते सभी, सब बाहर आता है, सब चाय बीड़ी पीने के लिए कि नहीं, सब बाहर आते हैं। तो बाहर जब आए तब उनसे, आप लोग को जो भी किया क्या अच्छा किया, लेकिन ये गीता तो थोड़ा तो देखिए। और उसी टाइम पे हम, मेरा ना हिंदी ठीक से आता था ना तेलुगु ठीक से आता था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के तेलुगु लोग होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसा बोलता था। भगवद गीता तिसकुंडी, ये की लाइन मालूम था, तिसकुंडी माने लीजिए एक दो लाइन, ये सब कुछ प्रभुपद का कृपा से, ये प्रभुपद का कृपा से हम लोग को कुछ ना कुछ लैंग्वेज थोड़ा बहुत सीखना, किंतु ये भारत में एक ही संस्था है जो संस्था में सभी भाषा का सभी प्रकार के लोग मिलेंगे। अपना मातृभाषा बोल नहीं सकते थे लेकिन ठीक से, लेकिन फिर भी अलग अलग देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग शहर का लैंग्वेज को हम लोग भी बोलना चालू किया। ये सब कुछ प्रभुपाद का कृपा से है, शिला प्रभुपाद की। लेकिन ये क्या है, थोड़ा सहन करना पड़ता है कोई भी चीज के लिए, थोड़ा सहन करना। फिर कहते हैं श्री विश्व वैष्णव राज सभा मध्य पात्र राज उपाधि भूषण विभूषित विश्वर मंगल लागी हई आच सर्वत्यागी विश्ववासी जन हिते रत। श्री विश्व वैष्णव राज सभा मध्य पात्र राज, और चैतन्य महाप्रभु कभी पात्र पात्र नहीं देखे, सभी को दिए हरिनाम, हरिनाम सभी को दिए। उपाधि भूषण विभूषित, और विश्व रे मंगल लागे, अभी तो सारा जगत में चलता है विश्व महाजज्ञ, इतने सब कुछ यज्ञ हो रहा है, कितने लोग शांति में बैठ रहे हैं, फिर भी शांति नहीं, अशांति, लेकिन फिर भी विश्व रे मंगल लागे है अच्छा सर्वत्यागी, विश्व का मंगल के लिए ओनली त्यागी ही सभी के लिए मंगल कर सकता है। जो त्यागी, जो वैरागी है वो विश्व के लिए मंगल कर सकता है, और जो आसक्ति में है वो क्या विश्व के लिए मंगल करेगा? लगता है विश्व मंगल महाजज्ञ मंगल हो रहा है और खुद अमंगल कर रहा है, मंगल कैसा होगा? इसलिए कहते हैं आचरण। इसलिए चैतन्य महापुरुष का आचरण था, किसी प्रकार त्याग किया। तब उपाधि भूषण विभूषित, और क्या कहते हैं, विश्ववासी जन के लिए, सारा जगत को हित करने के लिए, फिर करिते छ उपकार जाते पर उपकार लभे जीव श्री कृष्ण सेवाय। और चैतन्य महाप्रभु यही कहते थे जो कि कृष्ण का सेवा में लगाते थे, जीव को कृष्ण का सेवा में कैसा लगा देना है। राजी जी होली ने से राधा गोविंद महाराज कहते थे, कभी किसको भी देखते है ना उसको माला पकड़ा, किसी को भी देखते हो आप माला दीजिए उसको। अरे भाई एक बार वो माला करेगा ना, कितने जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा तत्क्षणात नाम करने मात्र से। इसको माला पकड़ाई, एक माला करने के लिए उसे संकल्प लेकर माला देके कराओ, महाराज का ये वाणी था। असल में जब भी जाता हूं मेरा बैग में कुछ माला होता है, कहां भी जाता हूं भाई माला लो, तो माला माल बनाना चाहते हो ना, माला लो और माला माल बनोगे, भगवान का नाम करो। तब फिर क्या कहते हैं, दूरे जाई भव रोगो खंडे जाहे कर्म भोगो हरि पाद पद में जाते पाए। क्या कहते हैं, दूरे जाए भव रोग, चैतन्य महाप्रभु ये भव रोग को से पार करना चाहते हैं, खंडे जाए कर्म भोग, ये जो कर्म भोग कर रहे ना, जो प्रारब्ध कर्म भोग रहे हो ना, ये खंडित हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, होने का बाद क्या होगा, हरि पाद पद्म जाते पाए, हरि का चरण को पाद पद्म को प्राप्त कर लोगे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का ये वाणी है, जो कि पहले चैतन्य महाप्रभु को धारा में जब हम आए हैं, यही शिक्षा करना चाहिए, ये शरीर संपूर्ण समर्पित कर देना चाहिए भगवान का शरण। द्रौपदी का शिक्षा से आप देखिए, गजेंद्र का शिक्षा से देखिए, पहले शरणागत भाव कैसा आएगा, जब तक शरणागत नहीं होता है हमारा अंदर कुछ रह जाता है फिर परेशानी है, संपूर्ण शरणागत होना पड़ेगा। थोड़ी से मात्र रौंच मात्र से रेत मात्र से कुछ मन में रह जाता है, वासना इच्छा रह जाता है, फिर हमें दो दो बार तीन तीन बार चार चार बार ये धरती पे जन्म लेना पड़ेगा। और लास्ट में एक ही कहानी कह के समाप्त करूंगा, सिर्फ दो मिनट आप लोग टाइम दीजिए, कहना चाहता हूं यहां पे तो हाड़ी मांगे दधीची मुनि का, हाड़ी को मांगने के लिए इंद्रदेव सभी लोग गए हैं और दधीची मुनि दे दिए। ये नामदेव का एक भक्त, विठल का एक भक्त था, उसका नाम था चोखा मेला, नाम क्या था जोर से बोलिए, चोखा मेला। ये बहुत बड़ा भक्त था विठल जी का। पहले समय पे जमींदार लोग क्या करते थे, और ये जो चोखा मेला है जात में चंडाल है, आप देखेंगे शूद्र लोग रास्ते में घूमते हैं, राजा लोग क्या करते, उसको पकड़ के काम में लगा देते थे पहले समय पे। तो वो चोखा मेला ऐसा घूम रहा था रास्ता में, और राजा ने पकड़ लिया, पकड़ के उसको काम में लगा दिया, बहुत बड़ा मखान बनाने के लिए, बहुत बड़ा घर बनाने में काम में लगा दिया। जब काम में लगा दिया तब घर बन गया, जब घर बन गया कुछ दिन का बाद तूफान आया, तूफान आते हुए घर को पटका दिया, घर गिर गया। घर गिरने मात्र से जितने लोग काम कर रहे थे सभी लोग क्या हो गए, हरि बोल हो गए, बोलो तो कम से कम, हमें हर भाषा में हरि बोल बोलना चाहिए ना, हमें कभी नहीं बोलना चाहिए मर गए, हरि बोल हो गए भाई, क्या हो गए, हरि बोल हो गए, सब हरि बोल हो गए। और सभी जगह पे न्यूज पेपर में फैल गया, सभी जगह पे न्यूज पेपर में, टीवी में, मीडिया में, आप जानते हैं मीडिया वाले पहले ये चीज को निकालते हैं, पहले ये चीज, भगवान के बारे में कोई नहीं निकलता है, पहला कहां पे मर गया, कहां पे छिड़कानी हो गया, कहां पे जमीन हड़प गया, कहां पे ये हो गया, सही, जितने कूड़ा कचड़ा चीज ना पेपर में, और सब निकल गया। निकलने के बाद सभी को पता लग गया, और जितने सब लोग समझ गए हमारा बेटा गया था कि हमारा पिताजी गए थे काम करने के लिए, सभी लोग आ गए और अपना अपना पिताजी को पहचान लिया, बेटा को पहचान लिया। तो पहचान के अपना अपना बच्चे को और शरीर को, जितने सब शरीर पड़ा था वो सभी शरीर को उठा कर लेकर चले गए अपना अपना। जाने का बाद विठल जी को थोड़ा मालूम हुआ, चोखा मेला बहुत दिन हो गया मंदिर नहीं आया। देखिए भगवान कितने व्याकुल होते हैं। विठल जी को मालूम हुआ चोखा मेला बहुत दिन आया नहीं, कहाँ गए। तो विठल जी स्वप्न में नामदेव बाबा को कहे, नामदेव जी को, और नामदेव देखो चोखा मेला कहाँ है। तब नामदेव ने पूछते 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 जाके पहुंच गया कहाँ पे, जहाँ पे सभी लोग पड़े थे। तब नामदेव देखा सभी लोग का शरीर तो अपना अपना परिवार का लोग आकर लेकर चले गए, और यहाँ पे कैसा मालूम पड़ेगा ये चोखा मेला का शरीर है। तब नामदेव ने क्या कहे, एक हाड़ी को उठाया और वो हाड़ी को उठा के कान का पास लगाया। जब कान का पास लगाया तब हाड़ी से शब्द आ रहा था, क्या आ रहा था, क्या आ रहा था, पांडुरंगा विठल पांडुरंगा विठल पांडुरंगा विठल, यह हाड़ी से आवाज आ रहा था। तब सभी हड्डियों को इकट्ठा किया, जिसी हड्डी से पांडुरंगा विठल का नाम उच्चारण हो रहा था वो हड्डियों को एक ही कपड़ा में बांधा, सारी हड्डियों को इकट्ठा करके कपड़ा में बांधा। कपड़ा में बांध के तब विठल जी का मंदिर पे विठल का सामने गया, तो उसी टाइम पे विठल जी आंख से आंसू बह रहा है, विठल जी रो रहा है भक्त के लिए। तब नामदेव हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना किया, ये है चोखा मेला का शरीर, और भगवान आदेश देते हैं विठल जी, कहते ये हड्डियों को मेरा मंदिर का सामने समाधि दो, मैं प्रत्येक दिन मेरा भक्त को दर्शन करते रहूंगा और भक्त मेरा को प्रत्येक दिन दर्शन करते रहेगा। ये भक्त का भाव है, भक्त ऐसा निष्ठा कर होके भगवान का नाम करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम तो ऐसा ही ऊंचा स्वर से बोलना चाहिए। आप लोग को मालूम है कि नहीं, प्रभुपद का शरीर से भगवान का नाम निकल रहा था, बॉम्बे में घटना है, आप लोग सुने होंगे कितना बार। नाम प्रति रुचि होना चाहिए, नाम निष्ठा हो जाना चाहिए। ठीक है, समय नहीं है, अभी प्रसाद का टाइम हो चुका है, फिर बाद में टाइम मिलेगा बताएंगे, बहुत कथा है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, शील प्रभुपाद की, संवेद गौर भक्त वृंद की, दाय गौर प्रेमानंदे, वंचा कल्प दुर्भेश्य कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।
चल रहा है क्या?